ولما دخلوا على یوسف، جب یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے، ذرا دوسرا سین دیکھیے، پچھلی دفعہ آئے تھے تو بنجامین ساتھ نہیں تھے، اور اب بالکل وہ عینی بھائی جیسے ماں اور باپ دونوں سے سگے بھائی بنجامین ساتھ ہیں. یوسف کے دل کے اوپر کیا اس وقت گزر رہی ہوگی، کتنے سال بعد ایک بھائی کو دیکھنا. کیا ہوا تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا، انا اخوک، میں تیرا بھائی یوسف ہوں. فلا تب تیس بیما کانو یا ملون، بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر. ذرا سا اس وقت اپنے آپ کو لائیے، ایک بھائی جو بھائیوں کے ظلم کا شکار ہو چکا ہے، دوسرے چھوٹے بھائی سے مل رہا ہے جس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ کمی بیشی کی گئی، اور مل کر کیا کہا، سناؤ بھائی تمہارے ساتھ انہوں نے کیا کیا، تم اپنی بھی تو سناؤ، یہ کرو وہ. نہیں، فلا تب تائس، یہ جو لفظ ہے نا تب تائس، یہ کیا ہے کہ کسی کی چیزوں کو اس طرح بھلا دینا کہ جیسے کہ ہے ہی نہیں، یعنی جیسے زخم کے اوپر سے نشان بھی مٹ جائے. زندگی کا اصول بنائیے، بہنوں کے ساتھ آپ بیٹھیں کیونکہ آپ سسٹرز ہیں، تو عموماً بہنیں بہنوں کو دکھ سکھ سناتی ہیں، بھائی تو کمی کرتے ہیں، لیکن اگر بھائی بہن اکٹھے بھی بیٹھے ہوں یا بھائی بہن سے جس طرح بھی ہے، تو کبھی پچھلے دکھڑے نہ بھولیں. عام طور پر جب دو مظلوم ملتے ہیں تو وہ ظالم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور ظلم کا تذکرہ کرتے، کیا ہوا، تکلیفوں کا ذکر، درد، یہ وہ. آپ یاد رکھیے گا کہ جتنا آپ دوسروں کی باتوں کو ڈسکس کریں گے آپ کو اتنی تکلیف زیادہ ہوگی، مظلومیت کے جذبات ابھرتے ہیں. ہمارے کلچر میں لوگوں کو مظلوم بننے کا بڑا شوق ہے. ایک بہن آ کر اپنی ساس کی کوئی برائی کرے نا، تو دوسری کہتی ہے لو تمہاری ساس تو اتنا کرتی ہے، میری تو اس سے بھی بڑھ کے کرتی ہے. تیسری بولے گی لو تمہارا تو میاں اچھا ہے، میرا تو میاں بھی ماں کی باتوں میں آ کے وہ بھی میرے ساتھ سختی کرتا ہے. بھلا آپ کرنا کیا چاہتی ہیں؟ فرسٹ آنا چاہتی ہیں مظلومیت میں کہ میں سب بہنوں میں سے سب سے زیادہ مظلوم ہوں، تمہیں کیا پتا کہ مجھے کن جلادوں کے گھر بھیج دیا ماں باپ نے. غلط طریقہ ہے. لکھیے، مظلومیت کا اظہار غم کو کم نہیں زیادہ کرتا ہے، زخم بھرتے نہیں ہیں رشتے ہیں. غموں کو کم کرنے کا طریقہ فلا تب تائس، جو ہو گیا جانے دو، چیپٹر کلوز. وہ کہتے ہیں نا کہ لیٹ بائی گونس بی بائی گونس، جو ہو گیا جو چلا گیا، اللہ ما قد سلف. پھر کتنی ہی تکلیف دہ یادیں مدھم ہو جائیں گی، آپ مطمئن ہو جائیں گے، آپ کو ایک وقت آئے گا یاد بھی نہیں آئے گا کہ زندگی میں کوئی دکھ بھی آیا تھا، کسی نے ستایا بھی تھا. پھر آپ اس کے لیے اسی طرح سوچیں گے جیسے اس سے پہلے سوچتے تھے. آج ہمارے یہاں خون کے رشتے دشمن بن جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، کہیں جائیدادوں کے بٹوارے، کہیں رشتوں کا ٹوٹنا، کہیں کچھ. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہم دکھی رہیں، یاد کرتے رہیں، ہمارے زخم ہرے رہیں. کبھی زندگی میں کوئی آپ سے کرے دے بھی نا، تو کہا کرے جانے دو، کیا ہوا، کیسے ہوا، پھر کیا ہوا، بھاجی اس کے بعد کیا ہوا، اب کیا حالات ہے. اسمائل، فلا تب تائس، کیونکہ مومن کی جو متاع ہے نا وہ صحت ہے. کون سی صحت؟ جسمانی صحت، ذہنی صحت، روحانی صحت. اور اپنے آپ کو مظلوم بنا کر ہم اپنی جسمانی صحت بھی خراب کرتے ہیں. اکثر کہتے ہیں شوگر ہو گئی غم کھا کھا کے، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا صدمے سے سہ کے. ہم ذہنی صحت بھی خراب کرتے ہیں، ڈپریشن، سٹریس، انگزائٹی عام طور پہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور روحانی صحت کیسے خراب ہوتی؟ نکمے نکارا ہو کے بیٹھے ہیں، مٹی کا بت بن کے بیٹھے ہیں، کام ہی نہیں کیوں ہو رہا، نہ گھر کے، نہ دین کے، نہ دنیا کے. تو اپنے آپ کو مظلوم بنا کر جینا اپنی شخصیت کو کچل دینا. یہ جملہ بڑا سا لکھیے گا، مومن صابر ہوتا ہے مظلوم نہیں. مظلوم بننا بالکل پسند نہیں ہے، پڑھ کے آئے آپ پیچھے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. یوسف علیہ السلام نے بھائی کے ساتھ ڈسکشن شروع ہی نہیں کیا کہ مجھے پہلے کنویں میں ڈالا، پھر میں وہاں سے نکلا، پھر مجھے تھوڑی قیمت پہ بیچا گیا، پھر میں بھائی ادھر آیا عزیز میں سے. نہیں، کیوں؟ لکھیے، جو ہی آپ بات شروع کرتے ہیں نا، پھر بات سے بات نکلتی جاتی ہے اور باتوں کا سلسلہ بڑھتا ہے، پھر غیبت شروع ہوتی، پھر اس کے بعد بدگمانی آتی ہے، بڑھتے بڑھتے آپ الزام تراشیاں کر رہے ہوتے ہیں، پھر بد دعاؤں تک بات پہنچ جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایسی ذہنیت بن جاتی ہے کہ بندہ پھر اپنے ہی زخموں کو کریتے رہتا ہے. اور عموماً اس میں گھر کے بزرگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، बीमारियां आ जाती हैं, दवाइयां खाते हैं, तो उनका हाल भी कुछ यही है, कुछ बुजुर्गों का ये हाल होता है अपने जवान बच्चों के साथ, अपनी जवानी, अपनी शादी के बाद की ये जुल्म और सितम सुना रहे होते हैं। क्या बताऊं, जब मैं आई तो तुम्हारी दादी ने मेरे साथ क्या किया, फुफियों का तो ये हाल था। अब हुआ क्या कि वो बच्चे मुतनफर हो जाते हैं फुफी और दादी से। अक्सर बच्चे क्यों ददियाल के खिलाफ और ननिहाल के करीब होते हैं, फुफियाँ क्यों बुरी लगती हैं, खालाएं क्यों इतनी अच्छी लगती हैं, क्योंकि माओ ने पीछे बातें की होती हैं। और आप वो बच्चे बचपन से सुन रहे हैं। अब जू ही बूढ़ी माँ ने ये किस्सा शुरू किया, आप कहते हैं अम्मा छोड़ देना, 60 साल हो गए इस बात को आपको दोहराते हुए, छोड़िए ये है वो है। नहीं, वो नहीं सुनेंगे, उनको करनी है। अब तो वैसे ही उनका टेम्पर ही लूज हो गया है, क्या करें, लोगों को मसरूफ करें, अपने घर के बुजुर्गों को मसरूफ कर दें कुरान के साथ। आजकल सोशल मीडिया के तहत घर बैठकर सुनना कितना आसान है, कोई एक नॉर्मल सा फोन लेकर दे दीजिए अम्मा जी को, और वो बैठकर सारा दिन फोन पे इधर से उधर और उधर से उधर लेक्चर सुनती रहे और सुनाती रहे। कितनी चीजों से बुजुर्ग बेकार चीजों से निकल जाते हैं। बच्चे से कोई चीज छुड़ानी होती है ना, तो आप उसको हाथ में कोई चीज देते हैं, फिर छुरी छुड़ाते हैं, तो अल्टरनेट दीजिए, चीजों को रिप्लेस करना सीखिए। कुरान में बड़ी कुव्वत है, मैं तो कहती हूँ कुरान की कुव्वत है तस्खीर का, अगर लोगों को यकीन आ जाए ना, तो ये सारे हथियारों और जंगी चीज़ों से ज्यादा कुरान को फैलाना शुरू कर दें, ये सबसे बड़ा हथियार है। आगे हम सूरह फुरकान में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि अल्लाह ने कैसे जाहिद हूँ बिही जिहादन कबीरा की बात की है। तो बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे किस्से में, आगे जो किस्सा शुरू होने लगा, इसको थोड़ा सा भी समझ लीजिए, पारे का थीम आपको दे दिया है कि कोई चीज़ इत्तफाक नहीं होती, अल्लाह की तदबीर होती है। अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को अब वो सब देना चाहते थे जो यूसुफ ने अल्लाह के लिए छोड़ा था, अल्लाह के फैसलों पे कबूल किया था। तो यहाँ से आपको इत्तफाकात दिखते हैं, बाहर एक लंबा सिलसिला है, सीरीज ऑफ इवेंट्स है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखेंगी, लेकिन पीछे बात आ गई कज़ालिका किदनाली यूसुफ, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तदबीर की। और यहाँ मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम पे रश्क आ रहा है, अल्लाह सुबहान तआला की नज़रों में एक बंदा अपना मुकाम कभी ऐसा पा लेता है कि अल्लाह उसके दिल की ख्वाहिश को भी पूरा कर देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि तुम्हें बुलाएं तो तुम ना जाओ, वो बुलाएं तो तुम ना जाओ। हदीस है, मैं खुलासा बता रही हूँ ना, यानी बिल्कुल उनका कोई इतना स्टेटस नहीं होता मुआशरे में, रिश्ता मांगे कोई रिश्ता ना दे, और इसी तरह से दावत करे तो उनको ना बुलाएं। लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका क्या मुकाम होता है कि अगर वो अल्लाह ताला के नाम पर कसम भी खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसम पूरी करने के लिए वो काम करता है। यहाँ यूसुफ की जिंदगी का अब आगे वो स्टेज शुरू होने वाला है। अल्लाह चाहते थे मेरा यूसुफ इतने साल की तन्हाई काट चुका है, अपनों से दूर लोग खुश तो नहीं होते, हमें अपने चाहिए होते हैं। सारी दुनिया घूम लें, जो आपको अपने प्यारे मुल्क में मजा आता है वो कहीं नहीं आता, ये पक्की बात है। ईद का दिन सबसे दुखी दिन होता है जब आप अपनों से दूर होते हैं, परदेश की खुशियां भी गम बन जाते हैं जब पास अपने नहीं होते, और पीछे खुशी हो रही हो तो आप आपका दिन वो सबसे ज्यादा उदासी और दुखों का होता है। तो अल्लाह यूसुफ को दो दो हाथ से वापस देना चाह रहे हैं। अल्लाह चाहते हैं कि यूसुफ को कम से कम अपना एक भाई जो कि उनके माँ का है वो इनके पास रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता रास्ते हमवार होंगे तो दूसरे भी आ जाएंगे, ये इंशाल्लाह अगली आयतों में आएगा। लेकिन आयत 69 तक जो 53 से हमने पढ़ा, इस पे थोड़े से तदब्बुर और अमल के नुक्ते ले लीजिए। अपने नफ्स की बुराई और शैतान की बुराई और इसकी शराकत दारी से अल्लाह की पनाह मांगिए, अपने किसी हाजतमंद भाई का पता लगाएं और इसकी मदद करें, नमाज के बाद मसनून अस्कार पाबंदी से करें क्योंकि वो नजरे बद और जादू से बचाव का जरिया है। ये बहुत अहम है, आज के दौर में बहुत नजरे बद का असर है, तो अपनी नेमतों के एक्सपोजर से ज्यादा छुपाने की कोशिश कीजिए। कुरान की रहनुमाई, अक्लमंद नजरे बद और हसद से मुख्तात रहता है और एतदाल के साथ इनसे बचाव के असबाब भी इख्तियार करता है। कामयाबी के लिए असबाब और भरपूर मेहनत करें, मगर इन्हीं पर भरोसा न कर लें क्योंकि हर मामला अल्लाह के हाथ में। हज़रत याकूब की उन सारी नसीहतों में से ये बात निकलती है। माँ बाप की फरमा बरदारी करें और अपने मामलात में इनसे मशवरा लें, बेशक इनकी बात मानने में भलाई है। चाहे माँ बाप बूढ़े भी हो जाएं, ज़रूर कान लगा के उनकी बात को सुने क्योंकि उसमें खैर होती है। गौर व फिक्र के चंद पॉइंट्स, अपने नफ्स को नफ्से मुतमईना बनाइए, जो नेकियां करता है और नेकियों को पसंद करता है और गुनाहों से नफरत करता है। तकवा के जरिए बंदा कबीरा और सगीरा गुनाहों को छोड़ देता है और ईमान की वजह से दिल इस बात की तस्दीक करता है जिनके मानने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। ये मांगिए, ये फुरकान है। कहा कर अल्लाह मेरा दिल करने लगे नेकी को, अल्लाह मुझे खुद ही गुनाह से नफरत हो जाए, अल्लाह जो मेरे हक में चीज़ अच्छी नहीं मुझे उससे तू दूर कर दे। नजरे बद हक है, यानी इसका लगना और इसका असर अंदाज होना साबित है, लिहाजा वो सारे असबाब इख्तियार करने चाहिए जो नजरे बद से बचाते हैं। दीन खैर ख्वाही का नाम है और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, इसको हमेशा नजर में रखिए। चलिए अब आगे एक बड़ा खूबसूरत मरहला, यूसुफ की जिंदगी का अगला स्टेज, आयत नंबर 70 से ऑनवर्ड देखेंगे। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, फिर जब इन्हें इनका सामान असबाब ठीक ठीक करके दिया तो अपने भाई के असबाब में पानी पीने का प्याला रखवा दिया। फिर एक आवाज़ देने वाले ने पुकार कर कहा है काफले वालों तुम लोग तो चोर हो। उन्होंने इनकी तरफ मुंह फेर कर कहा तुम्हारी क्या चीज़ खो गई है। जवाब दिया कि शाही पैमाना गुम है, जो इसे ले आए इसे एक ऊंट के बोझ का गल्ला मिलेगा, इस वादे का मैं ज़ामिन हूँ। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम तुमको खूब इल्म है कि हम इस मुल्क में फसाद फैलाने के लिए नहीं आए और ना हम चोर हैं। उन्होंने कहा अच्छा चोर की क्या सज़ा है अगर तुम झूठे हो। जवाब दिया कि इसकी सज़ा यही है कि जिसके असबाब में से यानी सामान में से पाया जाए वही इसका बदला है, यानी उसको इधर रहना पड़ेगा। हम तो ऐसे जालिमों को यही सज़ा दिया करते हैं। बस यूसुफ ने इनके सामान की तलाशी शुरू की अपने भाई के सामान की तलाशी से पहले, यानी शुरू में भाई की नहीं ली दूसरों की ली। फिर इस पैमाने को अपने भाई के सामान यानी जंबील से निकाला थैला। हमने यूसुफ के लिए इस तरह ये तदबीर की, इसको हाईलाइट कीजिएगा, कज़ालिका कितना ली यूसुफ। इस बादशाह के कानून की रूह से ये अपने भाई को ना ले सकता था, मगर ये कि अल्लाह को मंजूर हो हम जिसके चाहें दर्जे बुलंद कर दें, हर जी इल्म पर फोकियत रखने वाला दूसरा जी इल्म मौजूद है। ये भी बड़ा अहम असूल है, वफाओ का कुल्ली जी इल्म नलीम। कभी कभी हम वो बात जो कभी हमने अपने किसी उस्ताद से ना सुनी हो किसी दूसरे से सुन ले तो कहते हैं ये ठीक ही नहीं होगी क्योंकि हमारे उस्ताद ने तो कभी नहीं बताई। तो इस आयत को याद रखिए, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है और अल्लाह ताला तो खुद अल अलीम है। कालू यसरिक फ़कद सरका खुल्लहू मिन कब्ल, यहाँ देखिए फिर दिल का बग़ज़ ज़ाहिर हो रहा है जुमले से। उन्होंने कहा अगर इसने चोरी की है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। किसको कह रहे हैं जो सामने खड़ा है, अजीज़े मिस्र के रूप में। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को अपने दिल में रख लिया और इनके सामने बिल्कुल जाहिर ना किया। आप होते तो क्या करते। देखिए एक तरफ कह रहे हैं इज्जत वाले फलां फलां जनाब यूसुफ या अजीज़े मिस्र, और दूसरी तरफ उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। रिश्तों में अमूमन ऐसी डिप्लोमेसी होती है। अब यूसुफ सब्र कर गए, ये है मोहसिन और मुत्तकी होना, ये है सब्र। यहाँ सबर क्या है कि अभी वक्त नहीं आया कि इस कहानी को ड्रॉप सीन पे ला दिया जाए। हाँ लेकिन दिल में कहा काला तुम शर्रुम मकाना, तुम बदतर जगह में हो और जो तुम बयान कर रहे हो उसे अल्लाह ही खूब जानता है। कालू या अय्युहा लजीज, उन्होंने कहा अजीज़े मिसर इसके वालिद बहुत बड़ी उम्र के बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं, आप इसके बदले हम में से किसी को ले लीजिए। यहाँ से भी देखिए भाइयों के अंदर से खैर निकल रही है, हम देखते हैं कि आप बड़े नेक नफ्स हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा हमने जिसके पास अपनी चीज पाई इसके सिवा दूसरे की गिरफ्तारी करने से अल्लाह की पनाह चाहते हैं, ऐसा करने से तो हम यकीनन नाइंसाफी करने वाले हो जाएंगे। जब ये इससे मायूस हो गए तो तन्हाई में बैठकर मशवरा करने लगे। इनमें से जो सबसे बड़ा था उसने कहा तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह की कसम लेकर पुख्ता कौलो इकरार लिया है, और इससे पहले यूसुफ के बारे में तुम क्या कोताही कर चुके हो। यह है गिल्ट। इससे पता चलता है कि अब वो शर्मसार थे, तभी तो फिर अल्लाह ने तौबा की तौफीक अता फरमाई। बस मैं तो इस सरजमीन से ना टलूंगा जब तक के वाले साहब मुझे खुद इजाजत ना दे दें। यहाँ भी देखिए अब खैर आ रही है इनमें, तो किसी की एक गलती देकर उसको रिजेक्ट ना कर दीजिए, किसी भी वक्त इंसान की इसलाह हो सकती है। या फिर अल्लाह मेरे इस मामले का फैसला कर दे, वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। इर्जुला अबीकुम, तुम सब वालिद साहब की खिदमत में वापस जाओ और कहो कि अब्बा जी आपके साहबजादे ने चोरी की और हमने वही गवाही दी जो हम जानते थे, हम कुछ गैब की हिफाजत करने वाले ना थे। आप इस शहर के लोगों से दरियाफ़ फरमा लीजिए जहाँ हम थे, और इस काफिले से भी पूछ लीजिए जिसके साथ हम आए हैं, और यकीनन हम बिल्कुल सच्चे हैं। इतनी सफाइयाँ यूसुफ की दफ़ा क्यों ना दी, क्योंकि तब छूटे थे। ये है इंसान की सच्चाई और झूठे होने की दलील, जब सच्चा होता है हर मुमकिन हद तक अपना दिफा करता है और झूठा होता है तो फिर बात नहीं करता। अब क्या हुआ, यूसुफ, बिन्यामीन और सबसे बड़ा भाई यहूदा कहते हैं उसका नाम। ये तीनों मिस्र में रह गए और बाकी वापस आते हैं। क्या हो रहा है देखिए, बाप के सामने आए। काल बल सवलत लकुम अन्फुसुकुम सब अमरन। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो नहीं बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बना ली है, बस अब सब्र ही बेहतर है, करीब है कि अल्लाह इन सब को मेरे पास ले आए। ये कौन सा सब्र है? जिसमें उम्मीद है। और सब में कौन? तीनों बेटे। और यहाँ से मोमिन की हालत दिखती है कि बड़े से बड़े गम के दौरान भी वो पुर उम्मीद रहता है कि इसके बाद बहुत बड़ी खैर होगी। वही इल्म और हिकमत वाला है, करीब है कि अल्लाह इन सबको मेरे पास ही पहुँचा दे। वही इल्म और हिकमत वाला है। इंसान थे, चोट पे चोट पड़े तो दर्द ज्यादा होता है। पहले ही दिल दुखा हुआ था एक बेटे से, अब दो बेटे और चले गए तो क्या कहा। वतवल्ला अन्हुम वकाल या सफाला यूसुफ। फिर इनसे मुंह फेर लिया और कहा, हाय यूसुफ। अभी तो यूसुफ नहीं गए, अभी तो कहना चाहता हाय बिन्यामीन, हाय यहूदा। लेकिन अमूमन देखा गया कि जब नया गम पड़ता है तो पिछले गम भी याद आते हैं। मैयत वाले घर में लोग सिर्फ उस मैयत पे नहीं रो रहे होते, अपने पिछले गेमों पे भी रो रहे होते हैं। तो यूसुफ का गम याद आ गया। इनकी आंखें बाबा जारन जो गम के सफेद हो चुकी थी और वो गम को दबाए हुए थे। बेटों ने कहा, वल्लाही आप हमेशा यूसुफ की याद ही में लगे रहेंगे। या फिर वो दबे दबे जज्बे हसद के नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि घुल जाएं या खत्म हो जाएं। यानी औलाद का माँ बाप से बात करने का तरीका भी बहुत अहम होता है। इनके अंदाज में थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है, यानी अदब कम है। قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون। उन्होंने कहा, मैं तो अपनी परेशानी और रंज की फरियाद अल्लाह ही से कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते। ये है जी भरपूर फुरकू, जिससे आपको रिश्तों नातों की नरमी गर्मी दिखेगी। तो नोट कीजिए, रिश्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन होता क्या है, शक रिश्तों को दीमक लगा देता है। शक रिश्तों की दीमक है। रिश्तों को गलतियां नहीं, गलत फहमियां कमजोर करती हैं। खूनी रिश्ते वो विटामिन्स हैं जिनके बगैर जवानी तो गुजर जाती है, बुढ़ापा नहीं। रिश्ता कोई भी हो, खूबियों और खामियों समेत बर्दाश्त करके निभाया जाता है। जब आपने कबूल है कबूल है कबूल है कहा था ना, तो आपने अपने शौहर को उनकी खूबियों और खामियों के साथ, और आपके शौहर ने आपकी खामियों और खूबियों के साथ कबूल किया था। इसको कभी ना भूलें। छोटे छोटे शिकवों से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। तो इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह। किसी को अपने दुख ना सुनाया करें। मोमिन अपने गम और अलम और परेशानी में सिर्फ अल्लाह को पुकारता है। अल्लाह ताला के सामने रोना और अपनी तकलीफ बयान करना भी इबादत है। ऐसा करने वालों पर अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। आइए जरा तदब्बुर और अमल के चंद नुक्ते इन आयतों पे नोट करते हैं। अल्लाह ताला से मांगिए, इसकी पनाह में आइए और इसी से आजजी करें, इल्तजा करें कि वो आपको इल्म और फहम से नवाजे। जितना मुमकिन हो उतना अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कीजिए। अपने बहन भाइयों के साथ भलाई से पेश आइए और इन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम के बड़े भाई की तरह नसीहत करते रहें। कुरान से रहनुमाई, अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए राहें निकालता है। आप नेक बनिए, बाकी काम अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो इसे इल्म और फहम से नवाजता है। मुसीबत के मौके पर रोना अल्लाह पर यकीन या ईमान पर साबित कदमी के मुनाफी नहीं। जो चीज़ बुरी है वो शिकवा शिकायत और दिल का दुखी होना है। गौर व फिक्र के चंद नुक्ते, इल्म और ईमान के जरिए बंदा बुलंद दर्जात की तरफ बढ़ता चला जाता है। हर आलिम से बढ़कर एक आलिम होता है, यहाँ तक कि ये सिलसिला अल्लाह तक पहुँच जाता है, जो हर इल्म वाले से बालातर और कामिल इल्म वाला है। परेशानी जब इंतहा को पहुँच जाती है तो अल्लाह ताला कुशादगी लाकर तकलीफ को दूर कर देता है। अल्लाह ताला के सामने शिकवा करना सब्र के खिलाफ नहीं, मखलूक के सामने शिकायतें नहीं करनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें पढ़ने के दौरान आप ये भी बात याद रखिए कि अगर आप सच्चे होंगे ना तो अल्लाह आपकी सच्चाई ज़रूर साबित करेगा, ज़रूर साबित करेगा। बस थोड़ा सा सब्र से इंतज़ार कीजिए। आप देखिए कि यूसुफ अब अपने तकवे और ईमान के उस लेवल पे पहुंच चुके थे कि अल्लाह ने उनके दिल को भी पढ़ लिया कि वो बिन्यामीन को अपने पास रखना चाहते हैं। जैसे नबी सल्लम की निगाहों को उठना देखकर अल्लाह ने किबले को तब्दील कर दिया था, तो अल्लाह की नज़रों में अपना मुकाम पहुँचाइए। अब भाई के ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगा बीच में प्याला वगैरह, तो ये सारी आयात जो है ये काबिले तवज्जो है, ये अल्लाह ताला की तरफ डाल दीजिए। बाज़ लोग इस पे बहुत से सवाल करते हैं, तो यहाँ याद रखें कि किस्सा यूसुफ में तरतीब नहीं है या जुमलों पे जुमले नहीं, इशारे हैं। प्याला जो चोरी हुआ था उसके लिए एक लफ्ज़ आया है, और जो यूसुफ ने भाई के सामान में रखा था वो दूसरा था। तो बस आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ऐसे हालात बना दिए और ये सब कुछ बेहतर रखा। फिर दूसरी बात इसमें देखिए कि भाइयों का अब जो मामला आपके सामने इस वक्त है, इसमें पता चलता है कि दिल में बाप की फिक्र भी है और साथ ही साथ वो मजीद दुख देना नहीं चाहते, लेकिन दोबारा दुख उनके तरफ से बाप को पहुंचा बिन्यामीन के और यहूदा के ना जाने की वजह से। तो इससे पता चलता है कि जब बाप का दिल ना बुरा हो लेकिन आपसे फिर भी कोई गलत काम हो जाए तो अल्लाह ताला आपको उसके बाद नेकियों की तौफीक देता है। और एक जो बात बहुत प्यारी समझ आती है, हदीस में आता है कि क्यामत के दिन बंदा अपनी नेकियां ढूंढ रहा होगा तो कोई आकर कहेगा कि मेरी नेकियां किधर है, तो कहा जाएगा जो गीबत तुम करते थे उसकी वजह से वो जाया हो गई। इसी तरह आपने एक हदीस पढ़ी होगी कई दफा कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ियों को खाती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के मामले में इस वाक्य में यही दिख रहा है, उनकी सारी खूबियां सारी नेकियां जाया होती हुई दिख रही हैं सिर्फ एक हसद की बीमारी की वजह से। तो आज अपने लिए दोबारा एक रिमाइंडर लिख लीजिए कि आपने हसद नहीं करना। अब आप सोचिए कि हम सब गुनाहों की पोटलियां हैं, हमारे अंदर खूबियां भी हैं और खामियां भी हैं। अब क्या हुआ, जब आप तौबा की कोशिश करते हैं ना तो अल्लाह सुबहाना ताला आपके लिए रास्ते आसान कर देते हैं। अब जरा यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का अगला फेज देखते हैं आयत नंबर 87 से। या बनी यसहबू फतहस्ससु मिन यूसुफ, मेरे प्यारे बच्चों तुम जाओ और यूसुफ अलैहिस्सलाम की और इसके भाई की पूरी तरह तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। यकीनन रब की रहमत से नाउम्मीद वही होते हैं जो काफिर होते हैं। इसको हाईलाइट करें। याकूब अलैहिस्सलाम भी बहुत ही खूबसूरत रंग में यहाँ नजर आ रहे हैं आपको। बच्चों को कभी अपने आप से काटिए नहीं। कभी आपका बच्चा कोई गलत से गलत काम भी कर रहा है तो सोचिए भाई को कुएं में तो नहीं फेंका है। हमारे किसी बच्चे की गलती से बहन को चोट लग जाए, झूले से गिर जाए, तो माएँ कैसे उसके ऊपर चीखती हैं। बच्चों के साथ एटीट्यूड और इस तरह के गुस्ताखाना रवैये का इजहार करना उनको शह देता है कल वो भी ऐसे ही करें। इसलिए आप देखते हैं जैसे माएँ होती हैं वैसे भी बच्चे हो जाते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम पे प्यार आ रहा है इन आयात को पढ़ते हुए, और साथ ही साथ पुरउम्मीद भी हैं। फलम्मा दखलू अलैह, फिर जब ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो कहने लगे, ए अजीज हमको और हमारे खानदान को दुख पहुंचा, हम हकीर पूंजी लाए हैं, बस आप हमें पूरे गल्ले का नाप दीजिए और हम पर खैरात कीजिए। अल्लाह ताला खैरात करने वालों को बदला देता है। जरा से इस आयत पे देखिए, व तसद्दक अलैना, कल तक क्या कह रहे थे व नहनु उस्वा, और आज कह रहे हैं कुछ सदका ही दे दीजिए। अब ये बात सुनकर यूसुफ का दिल पसीज गया, भाई भिखारी बन गए। काला हल अलिम तुम अफाल तुम भी यूसुफ अवा अखी इजन तुम जाहिलून, यूसुफ ने कहा जानते भी हो कि तुमने यूसुफ और इसके भाई के साथ अपनी नादानी की हालत में क्या किया। उन्होंने कहा क्या बाकी तू ही यूसुफ है, जवाब दिया अना यूसुफ, सिर्फ अना यूसुफ को देखिए, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर फजलो करम किया, बात यह है कि जो भी परहेजगारी करे और सब्र करे तो अल्लाह ताला किसी नेकुकार का अजर जाया नहीं करता। आज सी देखिए, डाउन टू अर्थ होना देखिए। ये नहीं कहा मैं अजीज़े मिस्र फुलां फुलां जनाब किबलो काबा यूसुफ अलैहिस्सलाम हूँ, है ना यूसुफ, हाँ मैं हूँ, अपना नाम लेके कि मैं यूं हाँ ये हूँ। अपने नामों के साथ ज्यादा सबके लाके ना लगाया करें। और भाइयों को शर्मिंदा नहीं कर रहे, हाँ इजान तुम जाहिलून, मुझे पता है तुमने जहालत में किया था। ये है विन विन पॉलिसी, तुम भी जीतो हम भी जीते। मुखालिफ को कभी भी शर्मिंदा करके, बेइज्जत करके ना उससे इज्जत ले सकते हैं, ना प्यार ले सकते हैं, ना मोहब्बत ले सकते हैं। हम अमूमन दूसरे की बेइज्जती करते हैं और चाहते हैं कि वो मेरी इज्जत करें। दूसरे को नफरत दे रहे होते हैं, चाहते हैं वो हमें मोहब्बत दे। हम दूसरों की बुराइयां कर रहे होते हैं और चाहते हैं कि दूसरे के सामने वो मेरी इज्जत करे। यानी सास अपनी दोस्तों में बैठकर बहू की बुराइयां बयान करे, और चाहे क्या कि बहू अपनी सास की दोस्तों में सास की तारीफें करे। कभी ऐसा हुआ? हम इन रिश्तों में इन चीज़ों को भूल जाते हैं, और फिर अल्लाह अदर कैसे मोहसिनीन का ज़ाया नहीं करता, जैसे उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़ाया नहीं किया। قالوا تالله لقد آثرك الله علينا, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने तुझे हम पर बर्तरी दी है। हाय, ये जुमला सुनने में 40 साल लग गए। याद रखिए, आपका दुश्मन या आपका मुखालिफ या जो बंदा आपको किसी भी वजह से पसंद नहीं करता या दुख देता है या दुख दिया उसने, एक दिन आपकी तारीफ जरूर करेगा। ये हमें सीरत से भी मिलता है। हिंदा ने क्या कहा था जब मुसलमान हुई थी, कि एक वक्त था मुझे सबसे मबहूज चेहरा आपका लगता था और आज मुझे सबसे प्यारा चेहरा आपका लगता है। दिल बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। आपने वहशी को क्या कहा था कि तुम मुझे नजर आते हो तो मुझे अपने चचा हमजा याद आते हैं। ये इंसानी रिश्ते हैं। अंबिया कराम इंसान थे, इंसानों में आला दर्जे के थे। तो भाइयों ने आज भरे दरबार में यूसुफ अलैहिस्सलाम की बर्तरी का इकरार कर लिया, और साथ सुनिया बिकरारे जुर्म व इन कुन्ना लखातेन। और ये भी बिल्कुल सच है कि हम ही खताकार थे। ये जो हम 2+2 और फौरी फौरी और हथेली पर सरसों जमा कर अपने आप को सच्चा साबित करना चाह रहे होते हैं, काट दीजिए इसको। 40 साल सब्र कीजिए, फिर देखिए क्या होगा। वक्त बता देगा आपको आप सच्चे थे या कोई दूसरा सच्चा था जिसने आप पे ज्यादती की। कालला तसरीब अलैकुमुल यौम, जवाब दिया आज तुम पर कोई मलामत नहीं। यग़फिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें बख्शे। वहुवा अरहमुर राहिमीन, और वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। ये है यूसुफ का किरदार, ये मतलूब है आपसे मुझसे, और यही तो अख़लाक़े नबवी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जुमले कहाँ पढ़े, कहाँ मांगे कि जाओ तुम आज़ाद हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात आप पढ़ते हैं सीरत में, अहादीस में भी है। जब फतेह मक्का का मौका था तो आपके सामने वो लोग खड़े थे जो 21 साल से आपको सता रहे थे, आपकी करेक्टर असेसिनेशन कर रहे थे, किरदार कुशी कर रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे, आपको सता रहे थे, आपको तकलीफ़ें दे रहे थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आज मैं तुम्हें वही कहूँगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम वहुवा अरहमुर राहिमीन। जाओ तुम आज़ाद हो। ये सीखिए, तुम भी जीतो हम भी जीते। लिव एंड लेट टू लिव, बराबरी पे रखिए। क्या हुआ जिस दिन दोनों में से किसी एक ने डेथ बेड पे होना है ना, तो दूसरे ने आके रो के कहना, हाय भाई मैंने तुझे माफ किया, हाय बहन तू चली गई जा मैंने आज माफ किया। उस वक्त कोई नहीं उसको पता चलना। आज इस सबक को जाते हुए घर जाकर किसी रूठे को जरूर कॉल करें, मनाइए, सॉरी बोले, आई एम सॉरी, आई एम रॉन्ग, मे भी मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मे भी मुझसे गलती। ये जुमला कहना सीखे, आई एम सॉरी। कुछ नफ्स नहीं कटेगा आपका, एक ग्राम वजन नहीं कम होगा इससे, आई एम सॉरी कहने से। शैतान सबसे ज्यादा ये जुमला बोलना मुश्किल कर देता है। तो देखिए दिल मिल गए। अब आप जरा सोचे कभी रूठे हुए मिले हो तो वो कैफियत याद है? ऐसे नहीं लगता दिल धुल गए, बादलों में से सूरज निकल आया, रोशनी आ गई। जब आप किसी से नाराज होते हैं तो अगर अगला दुखी होता है तो आप भी दुखी होते हैं, और दिलों में खुशियां भरे। मुसलमान मुसलमान का भाई है, खानदान खानदान की एनर्जी है, बहन भाई आपके जैसे हैं, आप अल्लाह का फैसला है, अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। यही मिलने थे, यही भाई मिलने थे, यही बहनें मिलनी थी, यही शौहर मिलना था, यही ससुराल मिलना था, आपके बच्चों को यही मिलने थे। एक्सेप्ट इट, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, आपको सब अच्छे लगने लग जाएंगे। जब तक रिजेंटमेंट होती है ना, हम अंदर से कटे होते हैं। आपको पता है, जब हम अंदर से कच्चे होते हैं ना, छोटी छोटी बात पे दुखी होते हैं। जो अंदर से सेचुरेटेड होते हैं ना, जिनमें ईमान होता है, तकवा होता है, अल्लाह पे तवक्कुल है, अल्लाह पे नजरें हैं, दुनिया की कम आएगी, वो इन चीज़ों पे कोई बॉदर भी नहीं होते। कहते हैं और कर लो, जाओ जो भी है। हमें तो अपने रब पे यकीन है कि वो जो काम हमसे ले रहा है वो ठीक है। एक वाक्य मैं कई दफ़ा सुना चुकी हूँ कि एक शख्स दावा का काम करते थे, तो बेटी नाराज़ होकर घर आ गई, मियाँ से झगड़ा हुआ। अब मसला था क्या करें। इन्होंने अपने दोस्त से मशवरा किया कि भाई क्या करूं। इन्होंने कहा, दो बातें हैं तुम्हारे पास, दो में से एक चॉइस ये है, बाप बन के सोचो तो फिर जाओ मुकदमा करो, लड़ो, फिर बेटी को उधर से तलाक दिलाओ, फिर उसको आगे से कहीं शादी करो, रिश्ता ढूंढो, तो फिर ये करो। और दूसरी सूरत यह है कि दाइये दीन बन के सोचो और बेटी से कहो, बेटा मैंने अपनी कोशिश करके बेहतरीन इंसान आपके लिए ढूंढा और आपका उससे रिश्ता करा दिया। अब ये जो आदात का इख्तलाफ है, कमी बेशी, आप खुद निपटिए, मैं इस मामले में नहीं पड़ता। आज हम में से अक्सर लोग कौन सा रवैया अख्तियार करते हैं। हमने दुश्मनों से क्या जिहाद करना है, हम तो अपनों में जिहाद कर रहे हैं। हमारी सारी जंगें अपने ही दिफा की हैं। तो जिंदगी गुजारने के लिए एक बड़ा नस्बो लाइन रखिए। और वो कहते हैं ना, लड़ना तो है, टाइम नहीं है। मुंह में जुबान तो हमारे भी है, लेकिन अपने लफ्ज जाया नहीं करना चाहते। जो वक्त आप अपनी जंगों में और अपनी लड़ाइयों में जाया करते हैं, उससे तो बहुत बेहतर है कि आप एक सपारा पढ़ लीजिए और उस पर गौर व फिक्र कर लीजिए। अब यहाँ सारा मामला रफा दफा हुआ, अब रेमेडीज हो रही हैं। आप देखिए, एक से एक चीजें सही होती जाएंगी। चीजें पहले बिगड़ती हैं फिर बनती हैं। इस हबूबी कमी सी हाजा, मेरा ये कुर्ता तुम ले जाओ और इसे मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो कि वो देखने लगे और आ जाए और अपने तमाम खानदान को मेरे पास ले आओ। देखिए, ग्रेजुअली पहले एक भाई, फिर दो, फिर तीन, अब पूरा खानदान और माँ बाप बुलाए जा रहे हैं। वलम्मा फसलत ईर, जब ये काफिला जुदा हुआ तो इनके वालिद ने कहा, मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है, अगर तुम मुझे सठाया हुआ करार ना दो। कालु तल्लाही इन्नक लफी दलालिकल कदीम, वो कहने लगे, वल्लाही आप अपने इसी पुराने खप्त में मुब्तला हैं। ये कौन बोल रहा है भाई? ना ना, वो तो मिस्र से निकले, ये भाइयों की बीवियां और उनके बच्चे। याद रखिए, जो मर्द अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते ना, फिर बाद में उनकी बीवियां और बच्चे भी दादी दादा और सास ससुर की इज्जत नहीं करते। तो इज्जतें करवानी पड़ती हैं। टोन जरा वही दिखी जो पहले बचपन में भाइयों की थी, अब वही उनकी फैमिलीज की दिखती है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज अभी वहां से निकली है और अय्यूब अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف। सवाल यह है कि यूसुफ तो खुद मौजूद थे इतने साल से मिस्र में, कोई खुशबू नहीं आई और अब सिर्फ कमीज आ रही है तो खुशबू आ गई। ये अल्लाह की बात है, अल्लाह जैसे चाहे। और याद रखिए कि रिश्तों के दुख बर्दाश्त नहीं होते। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पहला रुख पूरा हुआ 95 आयत पे, लेकिन यहाँ से अब आगे क्लाइमेक्स देखेंगे, कमीज का कमाल है या रब का कमाल है। कैसे, अब क्या हुआ, फलम मान जाल बशीर, जब खुशखबरी देने वाले ने पहुंच कर इनके मुंह पर वो कुर्ता डाला, इसी वक्त वो देखने वाले हो गए यानी बीना। कहा, क्या मैं तुमसे ना कहा करता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। उन्होंने कहा, अब्बा जी आप हमारे गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए, बेशक हम कसूरवार हैं। बहुत ही खूबसूरत बातें। कमीज का किस्सा बहुत दफा निकला। इसी कमीज को देखकर याकूब अलैहिस्सलाम दुखी हुए बचपन में जब खून लगा देखा। इसी कमीज के फटने और इसको देखने के ऊपर यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में डाल दिए गए। और आज इसी कमीज की वजह से याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई लौट गई। पता क्या चला कि चीज़ एक ही होती है, वो आपके लिए बाबरकत है या बेबरकत, ये अल्लाह का फैसला है। चीज़ों में तासीर डालना अल्लाह ताला के हाथ में है। और दूसरी बात क्या है कि जितना ज़्यादा अल्लाह ताला पे नज़रें लगाई जाती हैं, अल्लाह ताला लोगों को बड़ी बड़ी मुश्किलों से निकाल देता है और फिर हर कहानी का एक एंड होता है। बेटों ने बाप से कहा कि आप हमारे लिए दुआ करें, इससे पता चलता है ये तौबा कर चुके थे। और हदीस में कहता है, ज़म्बी का कमल ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने ऐसे ही होता है जैसे उसका कोई गुनाह नहीं है। तो इनके भाइयों के बारे में आप और मैं कोई गलत राय कायम नहीं कर सकते। हमारे पास तो इससे ज्यादा गुनाह होते हैं और हम अपने आप को सच्चा साबित करते हैं, क्योंकि ये नबी बने थे बाद में। बाज दफा तफासीर में या बताने में इनकी बहुत ही इनकी करेक्टर असैसिनेशन कर दी जाती है। ऐसा ना कीजिए, ये गलती हुई थी, अब माफी मांग ली। और ऐसी गलती तो औरों से भी हुई। और ये जो काबी नहीं मांग रहा सऊफ अस्तग़फिरु, तो बाज कहता है कि तहज्जुद के वक्त की तरफ इशारा किया, और बाज कहता है कि थोड़ी स्पेस मांगी। कभी कभी फौरन माफ करने को दिल नहीं करता। तो ऐसे लोगों को जरा सा रिलैक्स कर दे कि अच्छा, जब आपका गुस्सा दूर हो जाएगा तो फिर आप मुझे माफ कर दे। हम सर पे सवार होते, हम स्पेस नहीं देते रिश्तों में। काला सौफा अस्तग़फिरु लकुम रब्बी इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम, कहा अच्छा मैं जल्द ही तुम्हारे लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, और वो बहुत बड़ा बख्शने वाला और नहायत मेहरबानी करने वाला है। अब आखिरी सीन, फलम्मा दखलु अला यूसुफ, जब ये सारा घराना यूसुफ के पास पहुंच गया तो यूसुफ ने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और कहा कि अल्लाह को मंजूर है तो आप सब अमन अमान के साथ मिस्र में आइए। यहाँ यूसुफ का किरदार एक बेटे के तौर पे देखिए। आजकल एक बहुत चीज़ कॉमन हो रही है, और वो क्या है, ब्लेमिंग स्टाइल। औलाद अपने माँ बाप को ब्लेम करती है, आपने मेरे से ऐसा क्यों किया, मुझे स्कूल से निकाला उधर डाला, आपने मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया, आपने मेरा किरदार नहीं बनाया, आप कभी पाकिस्तान मूव हो गए, आप कभी उधर चले गए, आप वापस आ गए, इधर हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसे वक्त में अपने बाप को बिल्कुल शर्मिंदा नहीं किया, जैसे पीछे भाइयों को नहीं किया ना, तो अब बाप सामने आए हैं। ये नहीं कहा व्हाई डिड यू डू दिस विद मी, आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी, आपने मुझे भाइयों के साथ क्यों भेजा, फिर मैं कुएं में गिर गया। हमारी तो फिर वो एक पूरी गर्दान शुरू हो जाती है ना गम और दुख की, जब मिलते हैं 100 साल क्या 20 साल पुरानी बातें भी पेश करने लग जाते हैं। आजकल की औलादों को ये अदाब सिखाने चाहिए कि माँ बाप के साथ अच्छा मामला रखें। और यूसुफ कैसी इज्जत दे रहे हैं, वह रफा बाबई ही अल अर्शी, और अपने तख्त पर अपने माँ बाप को ऊंचा बिठाया और सब उसके सामने सजदे में गिर गए। लिखिए, अल्लाह जब आपको कोई इज्जत दे, ग्रेजुएशन होती है तो वो जो आपको मेडल मिला ना, लाके माँ बाप के गले में डाल दें, खुश हो जाएंगे कि ये आपकी कोशिशें, ये आपकी मेहनत है। माँ बाप के साथ हमेशा छोटे बनिए, चाहे अल्लाह आपको बहुत बड़ाई भी दे दे। और अब ख्वाब की ताबीर का वक्त पूरा हो रहा है। वक़ाल या बती हाज़ा ताबीलु रुया या मिन कब, तब कहा अब्बा जी ये मेरे पहले के ख्वाब की ताबीर है, मेरे रब ने इसे सच्चा कर दिखाया, उसने मेरे साथ बड़ा एहसान किया जबकि मुझे जेल खाने से निकाला, जेल में जाने का कोई जिक्र नहीं, ताकि औरतों की बात ना ही हो तो बेहतर है। युते मोहसिन, हम कहते जेब में डाला, वो कहते जेल में निकाला, पॉजिटिव थिंकर है। और आप लोगों को सहरा से ले आया इस इख्तलाफ के बाद जो शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में डाल दिया था। यहाँ भी बुरा बना रहे हैं तो शैतान को कह रहे हैं, भाइयों को नहीं कह रहे। मेरा रब जो चाहे इसके लिए बेहतरीन तदबीर करने वाला है, इन्नहु अलीमुल हकीम, और वो बहुत इल्म और हिकमत वाला है। ये होते हैं मोहसिन। पूरे किस्से में कहीं यूसुफ के हुस्न का किस्सा नहीं आया, सिवाय वो औरतों की थोड़ी सी दिल फेंक बातों के। हाँ, मोहसिन होने का आ रहा है, मोहसिन बनिए, लोगों के ऊपर एहसान करें, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आए ताकि उनके दिलों में रहें। और अब अपनी फिक्र लग गई इंजाम। यह है यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ। रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्क, ए मेरे परवरदिगार तूने मुझे मुल्क अता फरमाया और तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखलाई। ए आसमानों ज़मीन के पैदा करने वाले, तो दुनिया और आखिरत में मेरा वली दोस्त और कारसाज है, तो क्या कर, तवफ्फनी मुस्लिम वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, तू मुझे इस्लाम की हालत में फौत कर और नेकों में मिला दे। क्या पता चला कि अंबिया कराम भी सोहबत सालिहीन मांग रहे हैं, तो आपको मुझे ये मांगने की कितनी ज़रूरत है। अब किस्सा पूरा हुआ, खूबसूरत अंजाम। 40 साल बाद ख्वाब पूरा हुआ। हम रात को ख्वाब देख लें, अगले दिन इंतजार कर रहे थे, अभी कुछ हुआ नहीं, अभी कुछ हुआ नहीं। कुछ लोग तो ताबीर की किताब पास रख कर सोते हैं कि ख्वाब आया तो जल्दी से उसकी ताबीर पढ़ लें, तो कभी कभी आंखों देखे ख्वाबों, और रात के देखे हुए ख्वाबों के लिए 40 40 साल इंतजार करना पड़ता है। ये जो ख्वाब है ना, इसको आज के दौर में विजन कहते हैं। अपना विजन बनाइए, क्या है, आज इधर हूँ, अगले साल किधर होंगी, उससे अगले साल कहाँ हूँ? मेरा 5 साल प्लान क्या है? 10 साल बाद कहाँ है? बशर्ते जीस्त 10 साल में मैंने क्या क्या काम करने हैं ये बनाइए, क्योंकि वा ममा यन्फो नास फयाम कुस, अगली सूरत में ये पढ़ने वाले हैं हम। वॉन्डर प्लानिंग, एक खाना पकाना ही बहुत बड़ा गोल होता है हमारे लिए। आज क्या पकाऊं? हाय भिंडियां पकाई, बड़ा टाइम लगेगा। साग बनाया, ये कोई गोल है? बगैर काटे साग को ब्लेंडर में घोट भी लेंगे ना तो वही नतीजा निकलना जो आपका सारा दिन साग काट काट के पकाने में निकलना। तो इसके लिए ना चाहिए, इंसानियत को आपकी जरूरत है, आपके इर्द गिर्द बहुत जरूरत है लोगों का आपकी। इस कुरान को फैलाएं, इस कुरान को पढ़ें, इस किताब को आम करें। इसलिए अब अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कह रहे हैं, ज़ालिक मिन अम्बाइल गैब नूही इलैक, ये गैब की खबरों में से है जिसकी हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। आप इनके पास ना थे जबकि उन्होंने अपनी बात ठान ली थी और वो फरेब करने लगे थे। वो आप लाख चाहें लेकिन अक्सर लोग ईमानदार नहीं और न वह होंगे। इस पे गौर कीजिए, बड़ी खतरनाक सोच देती है ये आयत। मैं भी कहीं मुशरिक तो नहीं? वमा अक्सर उन्नासी वलो हरस्त भी मोमिनीन, और इसके साथ ही आगे आएगा वमा यूमिनु बिल्लाहि अक्सरुहुम इल्ला वहुम मुशरिकून। तो याद रखिए, बंदा खुद को मोमिन कह रहा होता है लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो मोमिन हो सकता है ढका छुपा शिर्क हो, कोई चीज ऐसी हो जो उसको नहीं पता। तो हमेशा अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह हमें हमारी गलतियां दिखा दे, हमारी कमी बेशियां दूर कर दे। तदब्बुर और अमल की बातें, अमल किसी रिश्तेदार को अल्लाह की रजा के लिए माफ़ कर दें ताकि अल्लाह की रहमत से करीब तर हो सकें। अगर आपसे किसी पर ज्यादती हो गई है तो उससे माफ़ी मांग लें या इसके लिए अल्लाह ताला से मग़फ़रत तलब करें। आप कहते हैं ये दूसरी बात ठीक है, अगर आपकी अना बड़ी हुई है ना नफ्से अम्मारा, तो आप कहेंगे नहीं नहीं मैं माफ़ी मांग लूंगी, मैं उसको क्यों कहूँ। और अगर आप कहते हैं हाँ मैं अभी कॉल करती हूँ, मैं अभी मैसेज करती हूँ, मैं अभी जाती हूँ उनके पास, तो फिर आपका नफ्से अम्मारा अल्हम्दुलिल्लाह नफसे मुतमईना बनने वाला है। शैतान आपके और आपके भाइयों के दरमियान दुश्मनी डाल दे, इससे पनाह मांगी अल्लाह की रहनुमाई। तीन खसलतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कामयाबी दिलवाई और इंजाम इनके हक में बेहतर रहा, तकवा सब्र और एहसान। हमने भी ये तीन खूबियां अपने अंदर पैदा करनी है। गलती करने वालों को मुआफ कर देना अम्बिया की सिफत है, आप भी ये सिफत अपनाएं। नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र करने का एक सबब, नेमत के हसूल से पहले की अपनी हालत पर गौर कीजिए तो फिर आपको छोटी चीज़ भी बड़ी नेमत लगेगी। गौर व फिक्र उम्मीद मकसद पाने के लिए कोशिश और मेहनत करने पर उभारती है, जबकि नाउम्मीदी सुस्त और बोझल बना देती है। अल्लाह का डर मुसीबतों पर सब्र और गुनाहों से बचना दुनिया और आखरत में इज्जत देता है। गुनाह का इतराफ़ करना सच्ची तौबा की शरायत में से है। अल्लाह ताला हमें ऐसा ही बना दे। अब आखिरी रुकू है सूरत का, आयत नंबर 104 से। वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अज्रिन इन हुवा इल्ला ज़िक्रु लिल आलमीन, आप इनसे इस पर कोई उजरत तलब नहीं कर रहे, ये तो तमाम दुनिया के लिए निरी नसीहत ही है। आसमान और ज़मीन में बहुत सी निशानियां हैं जिनसे ये मुंह मोड़े गुजर जाते हैं। इनमें से अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पर ईमान रखने के भी मुशरिक हैं। क्या वो इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि इनके पास अल्लाह के अजाबों में से कोई अजाब आ जाए या इन पर अचानक क़यामत टूट पड़े और वो बेखबरी में हों? आप कह दीजिए, ये बहुत अहम आयत है, कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरा, आप कह दीजिए मेरी राह यही है, मैं और पैरोकार अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं पूरे यकीन और एतमाद के साथ, और अल्लाह पाक है और मैं मुशरिकों में से नहीं। आपसे पहले हमने बस्ती वालों में जितने रसूल भेजे हैं सब मर्द ही थे। यहाँ से नोट कीजिए कि कोई औरत नबिया नहीं बनी, यह आयत उसकी दलील है। क्या जमीन में चल फिर कर उन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले लोगों का क्या कुछ अंजाम हुआ? यकीनन आखिरत का घर परहेजगारों के लिए बहुत ही बेहतर है, क्या फिर भी तुम नहीं समझते? यहाँ गौर व फिक्र की दावत है। यहाँ तक कि जब रसूल नाउम्मीद होने लगे और वो कौम के लोग ख्याल करने लगे कि इन्हें झूठ कहा गया, फौरन ही हमारी मदद इनके पास आ पहुंची, जिसे हमने चाहा उसे निजात दी। बात यह है कि हमारा अजाब गुनाहगारों से वापस नहीं किया जाता। सूरत शुरू हुई थी कुरान और अरबी लफ्जों के साथ। अरबी जुबान में कुरान के नजूल पे सूरत पूरी हो रही है इसी मजमून पे। लकद कान फी कससिहिम में इबरत या उलिल अलबाब मा काना हदीस युफ्तरा। इनके बयान में अक्ल वालों के लिए यकीनन नसीहत और इबरत है। ये कुरान झूठ बनाई हुई बात नहीं बल्कि ये तस्दीक करती है उन किताबों की जो इनसे पहले की हैं। खोल खोल कर बयान करने वाला है हर चीज़ को और हिदायत और रहमत है ईमानदार लोगों के लिए। तो ये था किस्सा यूसुफ। ना तो इसमें यूसुफ की खूबसूरती की वजह से इस बात का तذکرہ आया कि प्रेग्नेंट औरतें अगर इस सूरत को पढ़ लें तो बच्चा बड़ा खूबसूरत होगा, ना दुल्हनों के मुंह के लिए शादी के वक्त में इस सूरत को पढ़ के फूकने की बात आई। हाँ ये बात आई कि अगर बच्चियों को सूरत यूसुफ पढ़ा दोगे तो शादी के बाद के जो उतार चढ़ाव होंगे ना उसमें कामयाब हो जाएंगी। तो हम जाहिरदारी को देखते हैं, अल्लाह ताला यहाँ अंदर की चीज़ों को दिखाते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमसे जाने और अनजाने के शिर्क को और किसी भी गलत अकीदे को दूर कर दे और हमें माफ़ फरमा। यत्तकी यसबिर की दो खूबियाँ आज रमज़ान के इन दिनों में अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। हम सब ने आदतों पे काम करना है क्योंकि रमज़ान आपकी मेरी आदत को बदलने के लिए आता है। कभी ज़िंदगी में दुखा हो ना दिल तो उस वक़्त सूरह यूसुफ को तर्जुमे के साथ सुनिए और पढ़िए, या एटलीस्ट यही पारा सुन लीजिए तो आपको ऐसे लगेगा कि अब आपको अपना दुख किसी को सुनाने की ज़रूरत नहीं है। तदब्बुर और अमल इन आयात पे, अल्लाह ताला की निशानियों पे गौर करना है जिन्हें हम सुबह शाम देखते हैं। शिर्क से पनाह मांगनी है, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका नुश्रिका बिका वाना आलम वस्तग़फिरुका लिमा ला आलम। इस सूरत से 5 ऐसे फवायद निकालिए जो आपकी ज़िंदगी में असर डाल सकते हों। कुरानी रहनुमाई, दाई इल्लाह दुनियावी मालो मता की हिरस नहीं रखता, वो आखरत के अजर का तलबगार होता है। कायनात में फैली अल्लाह की निशानियों से गाफिल नहीं होना, और अंबिया और ताबईन की दावत इल्म और यकीन के साथ होती थी इसीलिए पुर असर होती थी। गौर व फिक्र की बातें, दुआ करने पुकारने मदद मांगने में भी अल्लाह ताला की वाहदानियत पर ईमान लाना ज़रूरी है। मर्द और औरत की बहस छोड़कर ये देखिए कि अल्लाह ने नबूवत के लिए मर्दों को चुना, ये अल्लाह का फैसला है, उसकी हिकमतें वो जाने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को सबसे बेहतर समझने वाले और इस पर चलने वाले सहाबाए कराम थे। हमें भी इन्हीं के नक्शे कदम पे चलना है और अल्लाह ताला इसको आसान कर दे।